प्यारे मित्रों नमस्कार। आज 3 नवंबर 2016 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लाइफ मैनेजमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वाले विषय को ही थोड़ा सा अलग अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कल जो विषय मैंने चुना था कि दूसरों का किस हद तक भला किया जाए, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो बाद में उनसे ही नकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, इसको लेकर मैंने बात की थी। कुछ स्टूडेंट ने उस पर फिर से कुछ अपनी शंकाएं और अपने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि हमने एक टॉपिक को उठाया है तो जो उसके प्रति जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए ही जाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं या किसी भी इशू के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो जाते, तब तक फिर हमारे मन में उसके प्रति संदेह बना रहता है। और यदि संदेह है तो मानकर चलिए कि हम उसे पूरी तरह अपना नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आज उसी विषय को एक अलग कोण से आगे उठाने जा रहा हूं। मित्रों जैसे एक बात ये भी पूछी गई है कि हम किस सीमा तक दूसरे की मदद करते रहें और कब तक हम अपना नुकसान उठाते रहें। मित्रों एक बात मैं सीधी सी आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक नुकसान वाले उठाने वाली बात है, देखिए अब इस बात पर डिपेंड करती है ये बात कि आप नुकसान से आपका क्या मतलब है। आप पैसे का नुकसान उठा रहे हैं, आप समय की दृष्टि से नुकसान उठा रहे हैं, आप अपने संसाधनों के लिहाज से नुकसान उठा रहे हैं, आप भावना या मानसिक स्तर पर नुकसान उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी की मदद की और मदद करने के बाद आपको अपने खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली तो आपका दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग खराब हो गया, मन नहीं लग रहा है, मन मर गया है, काम नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह का नुकसान ही हुआ। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि किस तरह के नुकसान की बात है, लेकिन मित्रों एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए कल भी मैंने ये बात कही थी कि एक्चुअल में ये जो फील्ड है किसी की मदद करने का जो मामला है, देखिए लाभ और हानि का मामला ही नहीं है। मैंने कल भी आपसे बात की कही थी और आज भी कहूंगा कि यह पूरी तरह से एक आत्मा की बात है या मन की बात है। अगर करने से, किसी की मदद करने से आपको अच्छा लग रहा है, आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तब तो आप करिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि करना आपकी ड्यूटी है, बोझ है, कि चलो कर ही देते हैं या नहीं करेंगे इसकी मदद तो ये क्या कहेगा, तो वो कुछ उल्टा सीधा न कहे उसकी वजह से आप कर रहे हैं, तब फिर मामला बिल्कुल अलग है। ये तो फिर एक तरीके का जग व्यवहार है, या यूं कह लीजिए कि लेन देन का मामला है। और जहां लाभ और हानि का मामला आता है वहां तो फिर चीजें एकदम बदल चुकी होती हैं। वो तो फिर या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम संविदा कहते हैं, समझौता कहते हैं, संधि कहते हैं, या फिर नफा नुकसान के हिसाब से व्यापार होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कल वो एक विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रहा था। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता लेकिन मेरा मन मदद करने के लिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी डिमांड जेन्यून है, और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि नहीं मैं इस स्थिति में हूं कि मैं इसकी मदद कर सकता हूं। दोस्तों हो सकता है कि उसकी मदद करने में मुझे उस समय मेरा कुछ नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन मेरे मन में फिर यह भी बात आनी चाहिए कि ठीक है मेरा अपना इतना नुकसान तो हो रहा है, लेकिन मेरे इतने नुकसान के बदले में उसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, तो फिर मेरा नुकसान मायने नहीं रखता। और फिर मैं इसको इस रूप में भी देख सकता हूं कि ठीक है मेरा इतना नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बदले में आत्मा की प्रसन्नता, मन की खुशी, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जो संपदा मुझे मिलेगी, जो संपत्ति मुझे मिलेगी, वो इस मेरे छोटे से नुकसान की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ा है, अधिक है। तो स्वाभाविक है कि फिर मैं उस काम में लग जाता हूं। मित्रों ये एक बात हुई। अब मैं एक दूसरे प्रश्न पर आता हूं। जैसे कि बात हुई थी कि लोग दोष निकालने लगते हैं बाद में, अब ये दोष निकालने के बारे में मैं आप लोगों से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल मैंने जिस पर बात नहीं की थी, और इसे आप अपने अनुभव से भी जांच परख सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये केवल दोष निकालने के ही संदर्भ में नहीं, जीवन के सारे संदर्भों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों होता यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में एक अपेक्षा होती है कि ठीक है मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासेस में आने के लिए प्लान कर रहे हैं 15 डेज की क्लासेस में, तो आपके आपका दिमाग एक कल्पना की दुनिया रच लेगा कि हम वहां जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो नौकरी ज्वाइन करने पर मुझे ये फायदे होंगे, ये खुशी मिलेगी, ये सुविधाएं मिलेगी, ये मजे आएंगे, दिमाग उनको रच लेगा। मतलब एक इमेजिनरी इमेज बना लेता है, एक काल्पनिक छवि दिमाग गढ़ता है। इसमें देखिए न तो इसका कोई यथार्थवादी बहुत आधार होता है, बस हम जिन चीजों को चाहते रहते हैं उसी के अनुकूल उस कल्पना की दुनिया को गढ़ लेते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि हमारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनको हम उस कल्पना की दुनिया के माध्यम से पूरा करते हैं। अब वो कल्पना की दुनिया है। अब मित्रों आप यहां 15 दिन की क्लास के लिए आ गए, या आपको नौकरी मिल गई, या आप जिससे शादी करना चाहते थे उससे आपकी शादी हो गई, या आप उस जगह ही घूमने चले गए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह चीज आपको मिल गई, यानी कि आप वहां पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपका जो सामना हो रहा है, जो साक्षात्कार हो रहा है, वो एक यथार्थ की दुनिया से हो रहा है, वो एक रियल वर्ल्ड है जहां कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। 15 दिन की क्लास में आप आए हैं, क्लासेस जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके से चलनी चाहिए, उस तरीके से एक प्लान किया गया है और वो क्लासेस चल रही हैं। आपने एक नौकरी ज्वाइन कर ली, चाहे आप आईएएस ही क्यों ना ज्वाइन कर लें, तो आपने आईएएस ज्वाइन की और उस नौकरी में जाने के बाद जो जो चीजें होती हैं, चाहे सुविधाएं हों, चाहे संकट हो, चाहे अधिकार हो, वो सब चीजें आपको मिल गई। ये तो एक पक्ष हुआ जो हो रहा है, जो आपके सामने है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है मित्रों, दूसरा पक्ष वह है जो आपने कल्पना की थी और वो चीज हो नहीं रही है, वो चीज हो नहीं रही है, वो आपने कल्पना कर ली थी और वो जो कल्पना जो आपने की थी वो इससे बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कल्पना में तो कुछ लगता नहीं है। देखिए जो हम कल्पना करते हैं वो तो बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं होती है ना, क्योंकि उसके लिए कोई आपको बेस लेने की जरूरत ही नहीं है कि उस कल्पना का भी कोई रियलिटी होनी चाहिए। आप तो कुछ भी कल्पना कर लीजिए कि मैं आईएएस हो जाऊंगा तो मैं राजा हो जाऊंगा, जैसे जंगल में राजा शेर होता है, और मैं जो कहूंगा मेरे एक बार के कहने पर पूरा जो जिला है वो मेरे कदमों पर होगा, लोग जी हजूरी करके मेरे चारों तरफ दौड़ते रहेंगे और मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। इस तरीके की कुछ भी कल्पना कर लीजिए ना, उसका कोई अंत थोड़ी है, कर लीजिए कल्पना। लेकिन मित्रों क्या उससे बात हो जाती है? कल्पना कर लेने से क्या वो सारी बातें सच हो जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। हो वो रहा है जो आपके सामने है। फिर दोस्तों अब आपकी तुलना शुरू होती है। तुलना इस मायने में कि मैंने ये सोचा था, अब हो ये रहा है, यानी कि सोचने और होने में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और जब बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो वहां से फिर शिकायतें शुरू होती हैं, क्योंकि हमने तो ये सोचा था यहां तो ये हो रहा है, हमने सोचा था ये मिलेगा यहां तो ये मिल ही नहीं रहा है, हमने तो सोचा था कि ये हमारी इतनी ज्यादा मदद करेगा उसने तो थोड़ी सी ही करके छोड़ दी। या फिर हम उसको नीचा दिखाने के लिए कि अरे मदद कर दी तो क्या बड़ी बात हो गई, वो तो कर सकता था तो कर दी, नहीं कर सकता था तो कर देता क्या, अगर मैं भी उसकी स्थिति में होता तो मैं भी कर देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मित्रों ये दिमाग की एक बड़ी विचित्र किस्म की चाल होती है, षड्यंत्र होता है, या मैं अगर दूसरे शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये बहुत ही घटियापन होता है दिमाग का। लेकिन क्या कीजिएगा, ये उसका चरित्र है, ये उसका चरित्र ही है। अब सवाल ये है कि आपका अपने ही दिमाग पर कितना अच्छा कमांड है ये आप पर डिपेंड करता है, और यही आप हैं। क्योंकि मित्रों जो दिमाग का कमांड है, याद रखिए वही आपकी छवि निर्मित करता है, वही आपकी इमेज बनाता है, वही आपकी इमेज बनाता है, और आप वही होते हैं जो आपकी इमेज होती है। इस पर मैं इंडिपेंडेंटली कभी अलग से बात करूंगा, यहां मैं उसे इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो जिंदगी की बहुत गहराई से जुड़ी हुई बात है। तो मैं इस पर कभी अलग से बात करूंगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा संकट है दोस्तों, वो है हमारे दिमाग की जो इमेजिनरी पावर है, कल्पना करने की उसकी क्षमता असीमित है, जबकि चीजों के होने की और घटनाओं के घटने की जो क्षमताएं हैं या जो स्थितियां हैं वो बहुत सीमित होती हैं। तो असीमित और सीमित का तालमेल होना बहुत मुश्किल है, और सच पूछिए तो यही होता है। और इसी की वजह से दोस्तों फिर वो दोष निकालने लगेंगे, फिर आलोचना करने लगेंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे, हो सकता है कि वो आपके दुश्मन ही हो जाए। कोई ताज्जुब नहीं है कि ईर्ष्या अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा है तो वो पता लगा कि आप नहीं उनको खड़ा किया, आपने ही उनको मदद की, और आज वे आपके ही विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारी अपनी सोच है, अपना व्यक्तित्व है, अपनी जरूरत है आप कह लीजिए, जिसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए और हमें अपने कामों को अंजाम भी देना चाहिए। तो मित्रों, कुछ जो और प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है, और मैं आप लोगों से यदि इस इशू पर ही और कुछ बात अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग बिल्कुल मुझे मेल भेज सकते हैं, मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मित्रों, मैं समझता हूं कि चलिए दूसरे लोग जो भी दोष दे रहे हैं, जो भी शिकायतें करते हैं, अगर मुझे दूसरों से वो इस तरह की शिकायतें हैं तो मुझे लगता है कि एक बात का फैसला तो हमें कम से कम कर ही लेना चाहिए, और ये कि मैं दूसरों को इस तरह का मौका नहीं दूंगा। मतलब यदि कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसके प्रति आजन्म यानी कि जीवन भर आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसने जो मेरी मदद की है, देखिए मदद का मतलब है सद्भावना भी बहुत बड़ी मदद होती है, अगर आप उसके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, सद्भाव रख रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी मदद है। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में जब भी मुझे मौका मिला मैं उनकी इस सद्भावना के ऋण को पूरा करूं, उतारूंगा, उऋण होना चाहूंगा। ये उदात्त भाव, एक सबलाइम थॉट, इमोशन जो कह लीजिए, वो हम सब में होनी ही चाहिए। अगर हम दूसरे की इन चीजों की आलोचना कर रहे हैं तो कम से कम हम खुद तो उन चीजों को करके दूसरों की आलोचना का केंद्र बनने से बचें। लेकिन क्या हम सच में ये करते हैं दोस्तों? हमसे ये भी नहीं होता है, क्योंकि दूसरों को दोषी ठहराना, दूसरों की गलती निकालना, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे सरल काम ही नहीं है बल्कि सबसे मजेदार काम भी है, इससे मजा भी खूब आता है। हम अपने को नहीं देखते कि हमसे कहां कमी हो रही है, हमसे कहां गलतियां हो रही हैं। हम तो ऐसे न्यायाधीश हैं जो कभी गलती करते ही नहीं हैं, और फिर दूसरों की गलती निकालने का तो हमें अधिकार मिला हुआ है, दूसरों की फटाफट लगातार गलतियां निकालते चले जाइए। मित्रों, उससे होगा क्या, दूसरे बेवकूफ नहीं है, दूसरों को भी समझ में आता है, सही और गलत समझ में आता है, ये बात अलग है कि वो उसको कितना बताते हैं और कितना नहीं बताते हैं। तो मित्रों, आप अपने व्यक्तित्व पर सुदृढ़ रहिए, उसको मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि अंततः जीत आपके ही हाथ लगेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और फिर किसी इशू पर बात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।